This is VOA News. I'm Gene Randall. There has been a prisoner exchange between Iran and the United States. Chinese-American Princeton University graduate student Xuwei Wang has been freed for a U.S.-held Iranian scientist. The 38-year-old Wang had been held by Tehran since 2016, sentenced to 10 years in prison on charges of espionage. He was met in Zurich today by the special U.S. representative for Iran, Brian Hook. That is where Wang was swapped for Masoud Soleimani, arrested in Chicago last year for violating American trade sanctions against Iran. U.S. President Donald Trump in a statement says, quote, "We thank our Swiss partners for their assistance in negotiating Mr. Wang's release with Iran. The Swiss embassy in Tehran looks out for America's interests in Iran. The U.S. embassy there has been closed since 1979 and the 444-day hostage crisis. The question at hand, does this event mean a potential breakthrough between Tehran and Washington after months of rising tensions?" The United States has formally restarted peace negotiations with the Taliban, 3 months after President Trump abruptly stopped the year-long dialogue aimed at finding a political settlement with the insurgent group. Today's meeting in Qatar is said to be focused on a reduction of violence that leads to talks between the insurgents and the Afghan government, and then a ceasefire to end America's longest war. Investigators are trying to learn what caused a Saudi Air Force pilot to go on a deadly shooting rampage at a U.S. Navy base in Florida. It happened on Friday at the Pensacola Naval Air Station and left 4 people dead, including the shooter. 8 others were wounded. President Trump says he has a message from Saudi King Salman, who told him that the Saudi people are greatly angered by what he called the barbaric actions of the shooter. President Trump says he will temporarily hold off designating the Mexican drug cartels as terrorist organizations at the request of Mexico's president, Andrés Manuel López Obrador. More news at voanews.com. From Washington, this is VOA News. Several bushfires in Australia have widened to form a huge mega blaze that is burning out of control north of Sydney. We have a report from Phil Mercer for VOA in Sydney.
Sydney is again shrouded in a toxic, smoky haze. Health warnings have been issued, and many weekend sporting activities have been cancelled. Several blazes have combined to create a mega fire north of Australia's biggest city. The fire's front is 60 kilometres long, and officials warn it's simply too big to put out. Lauren McGowan works in a bar in the nearby city of Cessnock.
Everyone's a bit on edge. It's getting a little bit too close to home for around here. Even people that we have working here, the fire's practically on their doors.
There are 95 bushfires here in the drought-hit state of New South Wales. Half are burning out of control.
Phil Mercer filed that report for VOA in Sydney. South Korea said today that President Moon Jae-in and President Trump have agreed in a phone conversation to maintain a dialogue with North Korea, but noted the situation had become grave. Talks between Pyongyang and Washington have been in limbo since a summit in Hanoi broke up back in February. And North Korean leader Kim Jong-un has declared an end-of-year deadline for discussions to resume. But he also wants relief from American-orchestrated economic sanctions. It is suggested the North has been using weapons tests as a pressure tactic aimed at the U.S. The 30-minute phone call was the first conversation between Mr. Trump and Moon Jae-in in more than 2 months. The White House is not prepared to take a role in the impeachment process on Capitol Hill. The Democratic-led House of Representatives continues its hearings next week and appears poised to return articles of impeachment against President Trump by Christmas. Here's AP's Mike Gracia with a report.
The White House indicates it will not participate in the next impeachment hearing scheduled for Monday. A letter from White House counsel Pat Cipollone addressed to Representative Gerald Nadler, the Democratic chairman of the Judiciary Committee, did not expressly state the White House's refusal to participate. But Cipollone wrote that House Democrats are wasting America's time with what he termed a charade. The Judiciary Committee had given the White House until Friday evening to declare whether or not it intended to have legal representation at a hearing scheduled for Monday morning. Mike Gracia, Washington.
The United States has imposed sanctions on 3 Iranian-backed Iraqi militia leaders over their alleged role in suppressing protests that have shaken Iraq. They're accused of ordering their forces to fire on street demonstrators protesting government corruption and high unemployment. Since the civil unrest began in October, it's estimated that some 400 Iraqis have been killed by security forces. More news at voanews.com. Gene Randall, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूं असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। पाकिस्तान में जारी एहतसाब का अमल और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत। चीन और अमरीका के बिजनेस मॉडल्स मगर पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। सिंध में कारोकारी यानी इज्जत के नाम पर कत्ल के वाकयात में इजाफा, असल मुहरिकात क्या हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम अलिफ से ये तक, उसमें बात हम करेंगे तालीम पे। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान को श्रीलंका का सामना करना है। अपनी होम सीरीज में 10 साल से ज़्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर टेस्ट क्रिकेट बहाल हो रही है, सो इन इश्यूज़ पे गुफ्तगू होगी। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ होंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है।
प्रोग्राम है आपकी दुनिया में, हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अंदर कारोबार के लिए मौजूद माहौल के ऊपर। हमारे साथ हैं दुर्दाना नजम, जिन्होंने इत्तेफाक़ से अभी इसी हफ्ते एक आर्टिकल भी लिखा है जिसका मौजू है कि चाइना वर्सेस यूएस मॉडल्स ऑफ डूइंग बिजनेसेस। सो चाइना और अमेरिका दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल मुल्क हैं। दोनों के ऊपर मौशी तौर पे बहुत तकिया रहता है आजकल, बिलखसूस चाइना के ऊपर। सो ये इनके और चाइना और अमेरिका दोनों की जो मईशत की असास है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान किस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और किस से ज़्यादा मुतासर है? पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो किस बिज़नेस मॉडल को सपोर्ट करती हैं? अमेरिका से बहुत सारे कंसर्न्स या तशवीश वो सामने आती रहती है जब वो सीपैक से मुतालिक इन्वेस्टमेंट या लोन्स उसके अमाउंट के ऊपर बात होती है, तो ये खदशा होता है कि शायद पाकिस्तान के कर्ज़ा लौटाने की सलाहियत ना रखता हो और उसके लिए मुश्किल हो जाएँ, या फिर इस तरह जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे लिया गया कर्ज़ा कहीं चाइना से के कर्ज़ों की पेमेंट में ना इस्तेमाल हो जाए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनरली कई एक सवाल हम बिज़नेसेस के बारे में भी, जॉब्स क्रिएशन के बारे में भी, और दोनों बड़ी जो दुनिया की ये मईशतें हैं और पाकिस्तान जिनके साथ क्लोजली कहना चाहिए कि रबते में है, ताल्लुक़ में है, वो कहाँ से इंस्परेशन ले रहा है? दुर्दाना बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ये बताइएगा कि बुनियादी जो डिफरेंसेस हैं चीन और अमेरिका के बिज़नेस मॉडल्स के अंदर वो क्या हैं, और ख़ास तौर पर फिर सी पैक के पस मंज़र में जो कंट्रोवर्सीज या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या क्लैश ऑफ व्यू आ रहे हैं उसका सबब क्या है?
अगर मेरे आप आर्टिकल का जो हवाला है उसमें यह है कि एलिस वेल्स का, जैसे आपको पता ही होगा कि उन्होंने तकरीर की थी, उसमें उन्होंने ये दोनों बातें सामने रखी थी और पाकिस्तान को परसुएट करने की कोशिश की थी कि वो चाइना को, बल्कि खाली पाकिस्तान को तो खैर उनके सी पैक की वजह से उन्होंने फोकस किया हुआ था, बल्कि वो सब एशियन कंट्रीज को भी ये कह रहे थे कि आप सी पैक इस सेंस में ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका प्रोजेक्ट है, और अपने उन्होंने मॉडल को सामने रखा था, उसके कंपैरिजन किया था। तो उनका कहना का, वो कहना ये चाह रहे थे बेसिकली जो उनका क्रक्स था वो ये कह रहे थे कि चाइना जो है वो फंडिंग नहीं करता, वो ना फंडिंग करता है ना फाइनेंसिंग करता है, बेसिकली वो डेट जो इकोनॉमी है उसको प्रमोट करता है। वो हर जगह लोगों को पैसे दे रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका का हवाला दिया था कि किस तरह श्रीलंका की जो एक बंदरगाह है उसको उन्होंने आइलैंड जो है वो उसको पहले उसे पैसा लगाया, उसको एस्टेब्लिश किया, और जब श्रीलंका के ऐसे हालात हो गए कि वो पैसा नहीं दे पा रहे थे, टच भी नहीं दे पा रहे थे, तो उनको प्रेशर किया गया और फिर उसको 90 साल की लीज से ले लिया। इस तरह से उन्होंने दो तीन और वाकयात भी बताए, मालदीव का भी उन्होंने प्रेशर किया हुआ, तो वो तमाम एग्जाम्पल दे, फिर अफ्रीका की भी बात की, तो वो कहना ही चाह रही थी कि आखिर दूसरा एक तो ये है कि वो डेट इकोनॉमी जनरेट करते हैं चाइना, दूसरा वो कह रहे थे कि वो अपनी लेबर
जी।
अच्छा वो होता है वो, और उन्होंने उसका ये कहा था कि देखिए जितना पैसा वो पाकिस्तान को दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, वो सारा का सारा वो पैसा यहाँ दे रहे हैं, उन्हीं पैसों को, उन्हीं की लेबर आती है पाकिस्तान में और उन्हीं की लेबर को वो पैसे आप तनख्वाहों में दे देते हैं, या वही पैसा जो यहाँ लग रहा है उससे जो कुछ कमाया जाएगा वो अब चाइना को आप इंटरेस्ट के शोर में वापस करेंगे तो रिपेट्रिएट हो जाएगा सारा का सारा पैसा, मतलब पैसा आया भी चाइना से और पैसा वापस चाइना की तरफ चला गया। और इस तरह से उन्होंने कहा था कि भाई ये तो मॉडल जो है वो आपको भिखारी बना देगा, गरीब बना देगा, गरीब भी गरीब चले नहीं भी बनाता, लेकिन एक किस्म का आपको डिपेंडेंट रखेगा चाइना के ऊपर, और आप उस रूप में से निकल नहीं सकते। आपसे इवेंचुअली कहने का उनका बिटवीन द लाइन से मतलब था कि वो एक इम्पीरियल जो उन्होंने जब ये इम्पीरियलिज्म पैदा की थी तो ये इम्पीरियलिज्म चाइनीज इम्पीरियलिज्म आ जाएगी। इसके मुकाबले उन्होंने अपना मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात वो तो एक कहा था कि हमने बिजनेस जनरेट किया हुआ, हमने जमहूरियत में इन्वेस्टमेंट की, हमने USAID के जरिए बहुत से गाँव जो है उनमें बिजली लेकर आए और इस तरह की पॉकेट जो इन्वेस्टमेंट की होती है उन्होंने उसके बहुत सारा जिक्र किया, लेकिन कहीं ऐसा नहीं किया था। और फिर और सारी सी बात है जो अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली उनके उनके पास भी। और फिर उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो IMF की तारीफ की कि जी हमने इसमें कर्जा दिया और IMF की इतने प्रोग्राम पाकिस्तान में आने के बावजूद 14 से 15 आ चुके हैं शायद 13 पाकिस्तान में आज तक कोई खुशहाली नहीं आई। पाकिस्तान जो है आज भी उसी पे डगर पे खड़ा होता है जिस वक्त नया प्रोग्राम लेना होता है जिस वक्त पहले दिन था। अब तो दुनिया भर में इसी तरह से IMF ने कोई ऐसा खास जो है वो कोई कारनामा नहीं दिखाया, बल्कि बहुत से ममालिक जिन्होंने IMF से अपनी जान छुड़वाई उन्होंने उसके बाद तरक्की की। हमारे सामने शायद इंडोनेशिया की भी मिसाल है। तो इस तरह के बहुत से लेकिन वो असल में जो पीछे ग्रज है वो हमें पता ही है कि वो चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है और अमेरिका से जो श्रिंक होता हुआ इन्फ्लुएंस है एशिया में उससे वो खाइफ है और वो पाकिस्तान को डराना भी चाहिए। और CPAC जिसको हमेशा कहा जाता है कि वो जो ये बी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI इसका कहते हैं कि क्राउन जो है वो दैट CPAC अगर वो निकाल दें आप तो शायद इस सारे उसमें से वो हवा मतलब वो उसके उसके इतनी अट्रैक्शन ना रहे जितना कि उसकी वजह से है। और बेसिकली उससे देखिए पाकिस्तान भी तरक्की करेगा ना CPAC।
लेकिन एक बात है दुर्गाना बिन फर्ज, अगर इसको हम क्रिटिकली चलो एवेल्युएट ही कर लेते हैं जैसे आपने शुरू में एक जिक्र भी किया है कि अगर हम्बनटोटा की बात है या अभी रिसेंटली कोई और अफ्रीकी ममालिक के अंदर भी किसी जजीरे का मैं पढ़ रहा था मुझे सही इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो अगर कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से अगर कर्ज़ों इतनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी शरह में वो कर्ज़े ले लेता है जो काबिल वापसी नहीं होते तो कोई ना कोई कीमत तो उसकी होती है ना।
देखिए ये क्या हमारा हमारे पर पता नहीं कितना ट्रिलियन ऑफ डॉलर का कर्जा है अमेरिका का। आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए अमेरिका को तश्वीश भी क्यों है कि कर्जों एक देखिए उनको ये तश्वीश नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक और मुल्क का मकरूज हो जाएगा, उनको ये तश्वीश है कि पाकिस्तान को हम अपनी मर्जी से ट्रीट नहीं कर सकेंगे। अपनी मर्जी के फैसले करवाने होते थे पाकिस्तान से, अगर आपको याद हो जब बिल्कुल पाकिस्तान अमेरिका का डिपेंडेंट रहा है तो क्या करते थे, एक नलका था है वो फंड्स का बल रोक देते थे ना कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, हमेशा से यही होता है आपके सामने। तो वो एक बहुत बड़ा एक आम ट्विस्टिंग एक टैक्टिक है जो अमेरिका के पास हमेशा रही है। वो उनको ये लग रहा है उनको यही है कि ये जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। एंड पार्शली अगर हम देखें देखिए ये बहुत सारे बहुत जो CPAC के एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर इसको थिंक थ्रू किया होता CPAC का जो एग्रीमेंट है चाइना के साथ तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पे तक खड़े होते CPAC में जो हमारे पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है उसके हवाले से। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि हमने उसको उस तरह से इसके अंदर से जो हमें एक एडवांटेज पोजीशन मिल सकती थी जो हमें फायदा मिल सकता था देखिए हमारे बिजनेस मैनों ने बहुत समझाने की कोशिश की गवर्नमेंट को लेकिन गवर्नमेंट ने उस तरह से इस प्लान को नहीं लेकर चले। तो ऑब्वियसली जो एडवांटेज का तिल है वो चाइना ही की तरफ है। वैसे भी देखिए हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा चाइना के साथ तो ऑटोमेटिकली यस, लेकिन चाइना ने इसके एक जो आपको ये तो एवलांच ऑफ रिबटल आया था चाइना की तरफ से। चाइना ने ये भी कहा था और मेरा ख्याल है अमेरिका ने भी बहुत दफा जब 2001 में जब ये 9/11 हुआ था तो हमारे बहुत से कर्जे तब भी राइट ऑफ हुए थे जब उन्होंने हमारे साथ अलायंस करना था। तो चाइना ने कहा कि जी हमने कर्जे दिए तो है लेकिन बहुत सॉफ्ट बुनियादों पे दिए हैं, अगर पाकिस्तान नहीं दे सकेगा तो हम तो राइट ऑफ एक किस्म की बात उन्होंने की थी हम ये भी कर देंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है एक मकरूस होती है और जिन्होंने कर्जा दिया होता है वो बाय डिफॉल्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर बीइंग ایک اپر ہینڈ ان کا ہوتا ہے, تو
ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. آپ کا دردان نجم تجزیہ کار جرنلسٹ اینالسٹ آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
پروگرام ہے آپ کی دنیا, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جاری احتساب کے عمل کے اوپر. اگرچہ میڈیا کے اوپر نظر اگر ڈالی جائے تو جو پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کے اقدامات یا اس کے بیانات, اس کی وہ شدت نہیں نظر آئے گی پچھلے ایک مہینے میں جو اس سے پہلے تھی. پرائم منسٹر عمران خان ان کے جو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر مشیر ہیں, شہزاد اکبر صاحب ان کا ایک تازہ ترین بیان جس کے اوپر میں کمنٹ اور انالیسس شامل کروں گا. پہلے آپ کو بیان بلکہ اپنے پینلسٹ کا بھی تعارف کرا دوں. حصار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے یہ ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز ہیں اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شہریوں کو جیل میں ڈالنا ہماری خواہش نہیں ہے حکومت کی, اور اگر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یا بارگین ہوتا ہے تو حکومت اس چیز کو پریفر کرے گی. سو یعنی ایک اپروچ یا پالیسی نظر آتی ہے. اور پھر ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ابھی حال ہی میں برطانیہ کے اندر جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے پاکستان کے اندر ایک جائیداد املاک اور تعمیرات, اس میں ایک بہت بڑا نام ملک ریاض اور ان کی فیملی سے جو 190 million dollars کی سیٹلمنٹ کی ہے, جو اس فیملی نے اور ملک ریاض نے ان کو ادا کرنے کا کی کمٹمنٹ کی ہے, وہ پیسہ پاکستان کو بھیجا جائے گا. اس ریفرنس میں بھی شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملک سے باہر لے جایا گیا پیسہ اب واپس پہنچ رہا ہے. سو اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں کتنی کامیابیاں ہوئی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایف آئی اے کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں بڑی ایک بڑی تبدیلی لائی گئی ہے, کیا توقعات رکھی جائیں, کس سمت جا رہا ہے یہ سارا پروسیس, لکھتے رہتے ہیں اس موضوع کے اوپر, اس رانا صاحب ان سے جانتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا.
جی شکریہ.
تو فرمائیے گا یہ اپروچ جو ہے بالخصوص کہ اگر ایگریمنٹس یا سیٹلمنٹس ہو جاتی ہیں سول کیسز کے اندر تو اس کو پریفر کیا جانا چاہیے, کیا جائے گا, نہ کہ عام شہریوں کو جیل میں ڈالنا مقصد ہے. تو اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کے بیک ڈراپ میں یہ کیسی اپروچ ہے؟
دیکھیں, جو اب نئی لائن آف ایکشن بنائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ نیب کو یہ تو کہا گیا ہے کہ آپ کیسز بنائیں, لیکن اسے اس سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ انویسٹر کو نہیں چھیڑے گا. پریس کانفرنس کا بیک گراؤنڈر ہے وہ آپ نے ذرا تفصیل سے بتا دیا, لیکن اب حکومت اس طرف چلی گئی ہے کہ بجائے لڑکے جیل میں ڈالنے کے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اب آپ دیکھیں یہ جو 19 crore pounds آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں آج چائنا کی ایک کمپنی نے کتاب کچھ واجبات تھے وہ جمع کروائے ہیں اس نے. تو اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ریکوری کا پروسیس ہے یہ بڑھے گا, اور پاکستان میں ایک عرصے بعد جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی بڑھے ہیں, اور ہم اس پچھلے 5-10 years کے اندر تاریخ کے سب سے بڑے اس میں پہنچ گئے ہیں, ذخائر میں ہمارے اتنے اچھے ہو گئے.
تو رانا صاحب, لیکن یہ جو ہے چونکہ جو کلیم ہے اور ظاہر اس میں سوشل میڈیا پہ بولا لکھا بھی بہت جا رہا ہے کہ ایک تو برطانیہ کے اندر یورپ کے اندر کافی قوانین میں تبدیلی آئی ہے جو ڈیولپنگ ملکوں کو پھر انیبل کرتی ہے اگریمنٹس کے بعد کہ اگر وہ پروف کر دیں کہ الیگل یا ال گارڈن منی ہے تو پھر وہ ان کو ریپیٹریٹ کی جا سکتی ہے. سو اوور آل جو یہ چیز ہے, بھلے وہ ایکس وائی زی ہم کسی کا نام نہیں لیتے, اگر پیسہ ملک سے باہر گیا ہے تو واپس لانا اس کے بعد آسان ہوگا, اس کو بارش کا پہلا قطرہ سمجھا جائے, کیا خیال کیا جائے, ایک بہت بڑا بریک تھرو سمجھا جائے یا بس ایک معمول کی کاروائی, اور پھر اس میں برطانیہ کا انیشیٹو ہے, پاکستان کی نیب, پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیز, جے آئی ٹیز, انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا اس میں.
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پہلے میں ایک آپ کی بات کا پہلے پورشن کا جواب دینا چاہوں گا. پاکستان میں پچھلے 3 days سے بڑی چینج ہے, ایک عرصے بعد لوگوں کا تھوڑا سا کانفیڈینس لیول بحال ہوا ہے اور انویسٹرز کا ہوا ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا ہوا ہے, عام آدمی کو بھی ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے. ये मैं एक साफी हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, उनको सामने रख के आपको बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि इस बार जो अकवाम मुत्तहिदा का इजलास था जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जाके खिताब किया, उसमें एक चार टॉपिक थे, उनमें से एक था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। तो ऑलरेडी अकवाम मुत्तहिदा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, फिर जो जैसे आप बता रहे हैं कि ये यूरोप में और इन ममालिक के अंदर ये बात अब कानून साजी हो रही है कि जो चीज़ क्लियर हो जाएगी वो उस मुल्क को मिल जाएगी। दूसरा ये कि देखें बरतानिया की जिस एजेंसी ने ये सारा कुछ किया, बरतानिया में कानून और इंसाफ कदरे आज़ाद है पाकिस्तान के नस्बत। पाकिस्तान में बहुत सारी मसले होते हैं, बहुत सारे मामला जो हैं वो आड़े आ जाते हैं जिसके सबब ना तो इदारे ना एजेंसियां और वो उस तरह काम नहीं कर पाते जिस तरह अमेरिका में या बरतानिया में कोई इदारा या एजेंसी काम कर सकती है।
कहते हैं कि जो वाइट कॉलर क्राइम है ना, इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, हत्ता कि तरक्की याफ्ता दुनिया में भी, यहाँ तो खैर सिस्टम है, निस्बतन जल्दी जो है वो चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो नैब को इदारा फैसिलिटेट करता है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FIA है, वहाँ पर उसकी टॉप ब्रास पर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वाजिद ज़िया साहब जिनका एक बड़ा नाम था JIT के अंदर कि बड़ा साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं लेकिन अपोजिशन जमातों की तनकीद भी थी, अब उनको सरबराह बनाया गया है। सो इस इदारे की कहना चाहिए कि क्या जोहरी तब्दीलियां आ सकती हैं, प्रोसिक्यूशन अगर बेहतर हो जाए, एविडेंस कलेक्शन इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाए तो नैब कोर्ट्स या बाकी जुडिशरी उसके लिए कन्विक्ट करना, सजा देना और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद जो है वो बारगेन करना कितना आसान होगा।
देखिए बात यह कि अगर वाजिद ज़िया ना भी आते और FIA जितना काम कर रही थी, अगर उसको काम, ये मेरी नज़र में वाजिद ज़िया साहब की जो तैनाती है ये एक सियासी फैसला है क्योंकि उनका माइंडसेट मौजूदा हुकूमत के माइंडसेट के साथ मिला हुआ है। वो कुछ चीज़ों को तय कर चुके हैं कि ये गलत हैं और ये सही है। सो उनके जाने से सिर्फ डायरेक्शन ये हो जाएगी कि किन चीज़ों पर फोकस करना है, अदरवाइज जो पहले DG थे उनको भी ये कहा जाता कि आप इन डायरेक्शन पे काम करें तो इतना मुश्किल नहीं था होना। इसी तरह नैब की जहाँ तक बात है, देखे ना वाजिद ज़िया साहब की अगर हम ये समझें कि वो कोई बहुत बड़े तफ्तीशी और बहुत जीरक अफसर हैं तो JIT का तो सुप्रीम कोर्ट ने हशर नशर कर दिया है बाद में, और JIT पूरा जोर लगाने के बावजूद भी सिवाय उकामा के कुछ भी साबित नहीं कर सकी जो वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में कायम हुई थी और उस पर कौम के करोड़ों रुपए लगे।
सही।
तो ये मैं इस बात को इस तरह नहीं ले रहा कि कोई वो बहुत बड़े जिसे कहते हैं विजिलेंट और बहुत ज्यादा कोई सीजनल और बड़े है जिनसे आके कोई इनकलाब आ जाएगा, सिर्फ होगा ये कि FIA का जो एंटीना है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरफ है और इसने किस तरफ जाना है।
सही,
इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
तो अब ये सब कुछ थम गया है, गवर्नमेंट स्टेबल या कॉन्फिडेंट नजर आती है आपको?
देखें आज जो इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकरीरी के हवाले से हाई कोर्ट ने 10 दिन दिए कि आप इसमें अपना काम मुकम्मल कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि कुशन आगे हुकूमत के पास इस 10 दिनों में वो ले दे करके और चीजों को सेटल कर लेगी। यहाँ तक है सियासी इस्तेहकाम की बात, तो जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब गए एक अंदरूनी भूचाल जो है वो रुक गया। लेकिन मसला खराब होता है जब एक प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर की तरह दशनाम तराजी करता है और लफ्जों का चुनाव गलत करता है तो होता है। अब ये तो जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हो गए ये उनका भी फर्ज है कि वो उन्हें ये रियलाइज कराए। मौलाना फजलुर रहमान एक थे बहुत सख्त बोलने वाले, वो भी काफी दिनों से उन्हें आराम है खामोशी इख्तियार कर गए। ख्वाजा साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब, वो बहुत सख्त बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर गए। मशादुल्ला है, वो बहुत सख्त बोलते हैं, वो भी काफी दिनों से उनके अल्फाज काबू में है। तो इसका मतलब ये है कि लोग मैनेज तो हुए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद मरियम तो वैसे ही वो ट्विटर से भी गायब हो गई। एक अरसे बाद एक अच्छी कुछ दो तीन बड़ी खबरें आई, यहाँ तक कि मोरिस के बाद पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज भी करार दिया गया। जो हम जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन खबर है। हम तो बुरी खबरें सुनने के आदी है ना मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से, तो सियासी इस्तेकाम पैदा हुआ है। और
बहुत शुक्रिया आयसारण साहब, आपने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एहतसाब के जारी अमल और सियासी सूरतहाल पे अपना एनालिसिस दिया, आपका बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
यह है वॉइस ऑफ अमेरिका और प्रोग्राम आपकी दुनिया। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में अगरचे गैरत के नाम पे कत्ल के वाकयात रूनमा होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इन दिनों सिंध में बिलखसूस कारोकारी के तहत एक 13 साल बच्ची गुल समा रिन, उसको मार दिए जाने की खबरों के बाद सोशल मीडिया पे सख्त एहतजाज पाया जाता है। और हमने जायज़ा लिया है इसी बैकड्रॉप में कि सिंध के अंदर कारोकारी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। ये एक ऐसा फेल जिसको सिंध का कल्चर कबूल भी नहीं करता, और जो सिंधी कल्चर के कहना चाहिए कि दाई हैं, वो ये नहीं मानते कि ये एक सब्र, तहमल, बर्दाश्त और मोहब्बत के अकास कल्चर के अंदर ऐसी कोई रिवायत हो सकती है जिसमें बेटियों को इस तरह से मार दिया जाए। और ख़ास तौर पे जिस तरह गुल समा रिंद, जिनका ताल्लुक दादू के एक दूर दराज के इलाके से बताया जाता है, जिस तरह उनको कारी के इल्ज़ाम के साथ, कारी होने के इल्ज़ाम के साथ संसार किया गया, यानी पत्थर मार मार कर हलाक किया गया सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस पर बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पाई जाती है। सो हमने अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश की अपने एक प्रोग्राम में कि इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं जो सिंध के कल्चर को हमारे पैनलिस्ट समझते थे। सो आइए उनकी गुफ्तगू से कुछ इकतबासात आपको सुनवाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में शैला रजा साहबा ज्वाइन करेंगी, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध, फॉर्मर सेक्रेटरी, फॉर्मर डेप्टी स्पीकर सिंध असम्बली की। हमें ज्वाइन करेंगी शमा जुनेद, जो भी पी एच डी लॉरेट हैं लेकिन सिंध से ताल्लुक राइटर कॉलमिस्ट, सोशल इशूज़ पर लिखती हैं और ऐसे ड्रामों में परफॉर्म कर चुकी हैं जिनका ताल्लुक या जिनका मौजू कारोकारी था। शहनाज शोरो आथर हैं दो किताबों की, ऑनर किलिंग इन द सेकेंड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी, और दूसरी किताब उनकी द रियल स्टोरीज बिहाइंड ऑनर किलिंग। तो उनसे हम जानेंगे कि उनका मुशाहिदा और उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
शहनाज शोरो साहब बहुत शुक्रिया आपका, शमा जुनेजो साहब आपको भी हम वेलकम कहते हैं। शहनाज साहब आप तो हमें सबसे पहले इसी पे बताइए, जो आपकी एक बुक का टाइटल है वो हमारा सवाल है, द रियल स्टोरीज बिहाइंड ऑनर किलिंग, क्यों, क्या वाकयात होते हैं जो पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जिगर के टुकड़ों को इस तरह की मौत देने पर तैयार होते हैं।
कि आपका ये सवाल है कि ये जो क्या केसेस हैं, तो केसेस ये हैं कि देखिए आपका जो एक कानूनी तौर पर जो है ना, वो आप लोगों का जो कानून है पाकिस्तान में इस वक्त, वो ऑनर किलिंग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम अपना बैकग्राउंड जाकर देखते हैं तो हमें माजी में देखिए कि 1979 तक हमें ऑनर किलिंग के केसेस नहीं मिलते पाकिस्तान में, मिलते हैं तो इक्का दुक्का, यानी कि 1947 में पाकिस्तान बनता है और 1979 तक हमें कोई इक्का दुक्का इधर उधर कोई केस मिलता है, बल्कि इसके बाद ही ऑनर किलिंग की जो इस्तलाह है वो क्वाइन हुई है। और ये देखिए कि जब हमारे पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का गला घोटा गया, आर्मी डिक्टेटर ने अपनी जगह बनाई और इस तरह के खौफनाक कवानीन जो है वो पाकिस्तान के यानी कानूनी सिस्टम में वो लेकर आए, जिसमें जैसे कि हुदूद आर्डिनेंस ले लीजिए, किसास इंदियत ले लीजिए, तो उसके बाद एक तरह से जो है वो यानी कि परपेट्रस को या किलर्स को या रैपिस्ट को आपने एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया कि वो जो कुछ भी कर लेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं लूपहोल है कवानीन में, और उसके जरिए या तो उन्हें बहुत कम सजा मिलेगी या सजा नहीं मिलेगी। तो सिस्टम पूरा जहां पर आपका इस तरह से हो कि आप बाद में आपकी सुप्रीम कोर्ट भी दीर्घा सिस्टम को कह दे कि वो अनलॉफुल है, इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद पैरालल एक निज़ाम चलता रहे जिसका जो दिल चाहे वो जरगा करे, फैसला करे, गुनाह और सवाब का भी फैसला करे, और ये भी बताए कि जनाब आला किसको आपने किस तरीके के साथ कत्ल करना है और सवाब भी आप ही लेंगे क्योंकि उसके बाद जो है वो इतना पैसा दें। तो मतलब एक सिस्टम बहुत ही कंफ्यूजिंग सिस्टम है। मैं ये कहती हूँ कि ये जो फेमिसाइड है, ये जो किलिंग है, ये जो फेमिसाइड और किलिंग जिसको हम कह रहे हैं, ये अगर आप स्ट्रॉन्ग कवानी बना लें, वो कानूनी बना लें कि जिस वक्त विलियम ये सर चार्ल्स नेपियर ने यहाँ पर जो कानून बनाया था 1851 में, तो उसके बाद मुझे ये बताइए कि ये ऑनर किलिंग के केसेस कहाँ गुम हो गए, फिर क्यों नहीं कोई ऑनर किलिंग हुआ। तो सारा मसला ये है कि कानून नहीं है इस मुल्क में, और अगर कानून है तो वो ऑनर किलर्स को फेवर देते हैं, उन्हें सपोर्ट देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप ओवरटर्न नहीं करेंगे उन चीजों को जो हमारे कानून का हिस्सा बन चुके हैं, तब तक तब्दीली नहीं आएगी।
शमा जुनेजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने इवन ड्रामों के जरिए, ऐसे ड्रामों में भी परफॉर्म किया है जो इसी कारोकारी के मौजू के गिर्द घूमते हैं, सिंध के और इंटीरियर सिंध के कल्चर से भी आप वाकिफ हैं। मैं फिर वही कहता हूँ, बार बार आपने हर सवाल के साथ मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान में ऑनर किलिंग होती है, लेकिन अगर कोई सिस्टम किसी सिस्टम के ताबे या किसी एक, जिसको कह रहे थे हमारे एडवोकेट साहब, के कम्युनिटी सैंक्शन वायलेंस अगर हो, तो उसके अंदर शिद्दत या उसकी ऊपर फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शमा, आपके ख्याल में ये कारोकारी 21वीं सदी में अब भी क्यों है?
देखिए, अब भी इसलिए है कि ये इलेक्टेबल्स हैं सारे। आपने देखें कि जिरगे में जिनका नाम चल रहा है वो हम देखते हैं कि वडेरे, और ये सारा आप देखें कि इसमें माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर दोनों पर कानून साजी की जरूरत है। हम मैक्रो लेवल पर तो कानून साजी कर लेते हैं, पार्लियामेंट कर लेती है, लेकिन उसको माइक्रो लेवल पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मैसिव कैंपेन की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो उसको हाईलाइट करने की भी जरूरत है। ये देखें कि बदकिस्मती से ये वाकया फिर सोशल मीडिया के थ्रू से हमें पता चला और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो कवरेज नहीं हुई जो कि होनी चाहिए। हालांकि अभी मेरी आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले सलमान सूफी साहब से बात हो रही थी, उनका सेंटर था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लाहौर में, अब वो सिंध जा रहे हैं, वो वुमेन ऑन व्हील की कर रहे हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे देहात और जगह, वहां पर जहालत इतनी ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, चाहे कल एड्स डे था और जिस पर मैंने लिखा कि औरतों को उनके हस्बैंड्स ने मार दिया जब वो बेचारी पॉजिटिव निकली और बाद में सिरिंजेस के जरिए अफेक्टेड हुई थी, तो उनके भी केसेस दर्ज नहीं हुए। यहाँ पर उस बच्ची के बाप ने कहा है कि इस सर पर ईंट लगने से मर गई। होना तो ये चाहिए था कि पूरा मीडिया अपने कैमरे लेकर वहां पर जाता, चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर जाते, पीपल्स पार्टी की क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट है तो उनकी मरकजी कयादत जाती वहां पर, ताकि लोगों को पता चलता कि ये जो इतना एक वाकया हुआ है उसको गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से यह है कि अवेयरनेस करिए कि अगर किसी एक ने जहालत का मुजाहरा किया है तो दूसरा वो इस तरह से नहीं होने देंगे। तो ये चीज जो है वो हैमर करने की जरूरत है। ड्रामे होते रहते हैं, लेकिन आप बताइए कि कितने लोग ड्रामास देखते हैं, कितने लोग कॉलम्स पढ़ते हैं।
शहनाज शोरो साहब, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, यकीनन आपने एक तफसीली रीज़न बयान की है कि जो लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और इवन इदारों के अंदर बैठे हुए लोग वो भी कहीं ना कहीं लीनियंट हैं ऐसी ट्रेडिशंस के लिए। लेकिन क्या सिर्फ कानून, लोगों को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है?
जी बिल्कुल, लोगों को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है। लोगों को एजुकेट करना एक किसी भी हुकूमत की बुनियादी प्रायोरिटी होनी चाहिए और होती है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, जो मेरी जितनी तहकीक है उसमें यही चीज़ें सामने आई हैं कि जिन भी ममालिक ने अपने लोगों की जो है वो ज़िंदगी बदली है, उनकी सोच बदली है, उसमें एजुकेशन से पहले फूड आता है। आप फूड, आप ये देखिए कि आपके उस इलाके का MNA भी है, MPA भी है, सेलेक्टेड नुमाइंदा भी है, इलेक्शन भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस इलाके के लोग महरूम क्यों है?
सही।
उस इलाके के लोग महरूम है, वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता, वो बेटी स्कूल क्यों नहीं जाती जो वहाँ पैदा होती है? आपके पास वेलफेयर सिस्टम नहीं है, आप पैदा होते ही यहाँ जिन ममालिक पे हम बैठे हुए, पैदा होते ही बच्चे को पता है, माँ को पता होता है कि उसके लिए बच्चे का फंड आना शुरू हो जाएगा ताकि उस पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े। यहाँ पर 12-12, 13-13 मैं जाके इन देहातों में रही हूँ, मैंने जाके रिसर्च की है, अगर घर में 10 अफराद हैं उनमें से सिर्फ 2 के पास चप्पलें हैं, वो 2 चप्पलें पहनकर बाहर जाते हैं वापस आते हैं और दूसरे 2 घराने चप्पलें लेकर जो है फिर निकलते हैं। कोई एक बच्चा मेरे पास इंटरव्यू मौजूद है, आप अगर वो किताब पढ़ें, वो कहता है कि पूरी जिंदगी अंटिल द एज ऑफ 24 ही कुड नॉट बाय ए बॉल टू प्ले क्रिकेट। हम उस जगह पर बात करते हैं कि हम सोशल मीडिया के जरिए जो है वो किसी किस्म का इनकलाब ले आएंगे, मेरा ख्याल है कि ऐसा पॉसिबल नहीं।
ठीक है, अच्छा अभी फिल्म बना सकते हैं कला कलामी की माफी, शैला रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि उनको अगले टेलीविजन शो में जाना है, तो थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट का वर्जन आना भी जरूरी है, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर और मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट। और शैला साहब थैंक यू सो मच, हमारे साथ शमा जुरेजो साहबा हैं और शहनाज शोरो साहबा आथर हैं 2 किताबों की ऑनर किलिंग के ऊपर। और आपसे जानना चाहेंगे कि ये हम एक रिपोर्ट का दे रहे हैं सिंध पुलिस का कि 279 अफराद जो है वो पिछले 2.5 साल में ऑनर किलिंग के नाम पे सिर्फ सिंध में मारे गए, बाकी सूबों में भी होती है, इसमें हम सिंध की और उस बुनियाद पे बात नहीं करना चाहते। और रिसेंट वाकया जो दादू सिंध का है जिसमें गुल समारेन 13 साल की रिपोर्ट हो रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि वो शी वाज स्टोन टू डेथ, बड़ी हॉरेबल मौत है, आपने इस बारे में कुछ देखा है और इस सिचुएशन को बदलने के लिए पिछले 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है, क्या कुछ किया गया है?
अच्छा देखिए, सबसे पहले तो कानून पास हुआ है, दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम मुख्तलिफ पैराए में बात को देख रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इतने केस ज्यादा हुए हैं, हम ये कहते हैं कि इतने केस रिपोर्ट हुए हैं, वरना इससे पहले ये रिपोर्ट भी नहीं होते थे।
सही।
मैं ये नहीं कह रही कि वाकयात रुक गए या कम हो गए, बस रिपोर्ट हुए हैं ये, वरना इससे पहले रिपोर्ट भी नहीं होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है आज से 1.5 साल पहले का या 2 साल पहले का वाकया है जो औरंगी टाउन में हुआ था, कि एक पख्तून बच्ची जो है वो दरवाजे पे खड़ी किसी से बात कर रही थी, कोई आया होगा, जो भी हुआ होगा व्हाटएवर, तो इतने में उसका भाई आ गया और उसने उसको अंदर ले जाके छुरियों के वार किए और लोगों ने वीडियो बनाई और फिर उसके ऊपर एक रैली डाल दी और फिर वो लड़की उसके अंदर तड़पती रही और फिर उसकी डेथ हो गई। और फिर वो लड़का अरेस्ट हुआ तो उसके वालिद ने कहा मेरा एक ही लड़का है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दे ही सिंध में ही, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि शहरी सिंध में भी ये वाकया हुआ। तो एक तो ये बात है, यहीं से हमें मसला आता है कि एक औरत को या लड़की को सबसे पहले तो हमें अपने घरों से इंसाफ नहीं मिल रहा होता और कोई भी तैयार नहीं होता, और औरत को जो है वो इंसान से ज्यादा इज्जत समझा जाता है, हम बार बार यही कहते हैं
और इज्जत ये नहीं है कि उसको मार दिया जाए, लेकिन ये कि इस केस में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रुएकार आएगा या उसके लूप होल से वो फायदा उठा लेंगे।
मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ताकतवर लोग जो हैं, उनका इलाके में इस तरह से दबाव होता है कि इंसान जुल्म में सहता रहता है और अपने लिए आवाज नहीं बुलंद करता। हमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। और
लेकिन शैला, अगर ये बात मेरे पैनलिस्ट करें ना, जहाँ पे थोड़ी सी बेबसी साउंड हो तो समझ भी आता है, लेकिन आपसे हम ये बेबसी नहीं सुनना चाहते, आपके पास इख्तियार है, आपके पास ताकत है।
मैंने बेबसी नहीं की है, मैंने बेबसी नहीं की है, मैं ये कह रही हूँ कि हमने वो कानून बनाए हैं कि हम पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक, वो इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक काउंसिल ने कहा कि सिंध असेंबली जो है वो गैर इस्लामी है, इसे डिसॉल्व कर दिया जाए। हमने अगले दिन कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं, आपको डिसॉल्व कर दिया जाए। और आज हमारे यहाँ 60 से ज्यादा केस रजिस्टर भी हुए चाइल्ड मैरिज के, लेकिन बात वही है कि कानून जो है सिर्फ पास कर देने से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी के सब सेगमेंट्स ने अपना किरदार।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
جی سامعین پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن. اسپورٹس کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور آپ کی میری ہم سب کی جو پسندیدہ کھیل کرکٹ، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. کرکٹ میں اگرچہ نتائج زیادہ اچھے نہیں ہیں، آسٹریلیا کے خلاف سیریز، ٹی ٹوینٹی سیریز، پاکستان 2-0 سے ہار گیا، اور دو میچوں پہ جو مشتمل ٹیسٹ سیریز تھی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا، اس میں بھی 2-0 سے بلکہ دونوں میچز میں اننگز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ ہم بات کریں گے. اور پھر اچھی خبر بہرحال یہ ہے کہ پاکستان میں کئی برسوں کے بعد، اشرف بھر کے بعد، ٹیسٹ کرکٹ بھی بحال ہونے جا رہی ہے. ٹی ٹوینٹی میں لوگ پہلے آ چکے، ون ڈے بھی کچھ کھیلے گئے، اور اب ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے سری لنکا ہی کی ٹیم جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. دو میچز ہوں گے، ایک اچھی نیوز ہے، لیکن پاکستان کی ٹیم ہوم کراؤڈ اور ہوم انوائرمنٹ جو ہے گراؤنڈ، اس کا کتنا وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس وقت وہ کافی ڈیمورلائزڈ ہوگی جب وہ آسٹریلیا سے پہنچی ہے، اس ٹیم میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اور پھر پاکستان کے اندر جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے نئے کرکٹ فارمیٹ کا، ڈومیسٹک کرکٹ فارمیٹ کا، وہ اب تک کتنا پروڈکٹیو ہو رہا ہے. ان دو تین موضوعات پہ ہم انالیسز لیں گے. جناب محسن حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر، فارمر چیف سلیکٹر اور فارمر کوچ پاکستان کی ٹیم کے، اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا. محسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جی نہیں، موسٹ ویلکم. اور سب سے پہلے آپ کو اور سارے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کہاں سے شروع کریں، ٹیسٹ کرکٹ کی بحالی پہ یا ٹیسٹ کرکٹ میں زبوں حالی پہ؟
دیکھیے، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے دکھ ہوا دیکھتے کہ جس طرح سے ہم سری لنکا سے ہوم سیریز جو آئی تھی وہ ٹی ٹوینٹی اور ون ڈیز کے لیے، اس میں ان کی تو کافی کمزور سی ٹیم تھی آئی تھی، جو ان کے پورے پلیئرز بھی نہیں آئے تھے. ویسے بھی سری لنکا آپ کو پتا ہے اس وقت ایون اگر پوری ٹیم بھی ہو تو وہ ریٹنگ میں کیا کہتے ہیں وہ ہے بہت پانچویں چھٹے نمبر پہ، ساتویں نمبر پہ، ایسے کچھ. ہاں تو اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اور میں اسی کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں اسد کہ دیکھیے، جب آپ کے پاس اچھے گیم پلانز نہیں ہوں گے، اسٹریٹجی نہیں ہوگی، ڈٹرمنیشن موٹیویشن نہیں ہوگی، تو ایک کمزور سری لنکا ٹیم ہو یا پھر آسٹریلیا کی تھوڑی بہتر ٹیم ہو، مضبوط ٹیم، حالانکہ وہ آسٹریلیا کی اتنی مضبوط ٹیم نہیں ہے جو آج سے کچھ سال پہلے تھی، لیکن پھر بھی آسٹریلیا کی ٹیم بہت مضبوط ٹیم تھی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، گیم پلان، اسٹریٹجی، ڈٹرمنیشن اور ایک وننگ اسپرٹ، ایک اسٹرانگ باڈی لینگویج، مینٹل ٹفنس، اگر آپ یہ نہیں دکھائیں گے تو چاہے کمزور ٹیم ہو چاہے تگڑی ٹیم ہو، آپ اس میں جیتنا مشکل ہو جائے گا. اسی وجہ سے سری لنکا کے خلاف جو ہماری ٹی ٹوینٹی میں بھی ہم اچھا نہیں کھیلے، ون ڈے میچز بھی ہم بڑے مشکلوں سے جیتے ہیں ان سے، پھر آسٹریلیا جا کے ہم بالکل ون سائڈیڈ ہار گئے. اور لڑکے آنیسٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ اسد، پلیئرز آر گڈ، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، لیکن اب پوٹینشیل جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ اس کو یوز کس طرح کر رہے ہیں؟ آئی بلیو ان دیٹ. اور میں نے جب میں کوئی تو بنا اسے بلا بڑا بول نہیں بول رہا تھا، مجھے وہی ایک ٹیم ملی تھی جو بکھری بھی ہوئی ٹیم تھی، لیکن جب اس ٹیم کو میں نے سنبھالا، کچھ نہیں کیا تھا، بس لڑکوں کو موٹیویٹ کیا، ان کو تھوڑا گیم پلان دیے، اسٹریٹجیز بنائی، اور ایک باڈی لینگویج اسٹرانگ کر کے ایک وننگ اسپرٹ کے ساتھ کھلایا، ان کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں جو جب میں کوچ تھا. لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے پلیئرز اچھے ہیں، لیکن کیا چاہیے اسد؟ ڈٹرمنیشن چاہیے، اچھے گیم پلان چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے، اور سامنے اپوزیشن کتنی تگڑی ہے اس کے حساب سے وہ کرنا چاہیے. تو یہاں تو میں اس کو مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ ہم اتنی بری ٹیم نہیں ہے جتنا ہم نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی، اور اس کا قصور میں پلیئرز کو ضرور ان کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے. لیکن دیکھیے، ٹیم کے ساتھ جو کوچز ہوتے ہیں، جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. دنیا بھر میں ہر ٹیم کے پاس مینجمنٹ ہوتی ہے، اسی وجہ سے گیم پلانز اچھے بنائیں، اسٹریٹجی بنائیں، لڑکوں موٹیویٹ کریں پلیئرز کو، اور ان کے ساتھ ایک باڈی لینگویج بڑی اسٹرانگ رکھیں، وننگ اسپرٹ رکھیں. یہ فرق ہوتا ہے. اس وقت آپ اگر، میں صرف ایک کھلی مثال دے رہا ہوں، اسمتھ آسٹریلیا کی ٹیم میں ایک واحد ایسا بیٹسمین ہے جس کو آپ اسٹار پلیئر کہہ سکتے ہیں. وارنر بری طرح اسٹرگل کر رہا تھا، اسے بےچارے سے 20-25 رن ہونا مشکل ہو رہا تھا، 300 رن ہم نے کروا دیے. جی ہاں، تو یہ چیز ہے، اس چیز کا ڈفرنس ہوتا ہے.
اور اب آپ نے جو ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اسی میں تھوڑا اور ایڈ کرنا چاہوں گا.
بیٹنگ آف کورس میں تو تھوڑا سا محسن بھائی نظر ڈال رہا تھا کہ 95 کے بعد بڑی بڑی پلیئرس کے اوپر جو مشتمل ٹیمز تھیں انہوں نے بھی اسٹرگل کیا ہے, 200, 250, 300 پاکستان نے بھی ایک آدھا فٹ 300 کا رنس اینی وے ٹچ کیا ہے, لیکن بالنگ میں چیلنج آتا تھا آسٹریلینس کو بھی. سو پاکستان کی بالنگ کے اندر تو بالکل ڈنگ نہیں تھا اور آرام سے تین تین وکٹوں کے اوپر وہ اتنا رنز کا پہاڑ کھڑا کر گئے. آپ نے اسمتھ کی ٹرپل سینچری کی بات کی اور بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ ٹین ایجرس کے اوپر مشتمل یہ اٹیک تھا. ایکسپیرئنس, اسکل سیٹ یا مینٹل اسٹرینتھ, سلیکشن میں خامی, ایشو کیا تھا کہ بالکل ہی اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کر سکی ٹیم. اتنا تو افغانستان بھی ٹیم جاتی تو کم از کم آسٹریلینس کو پتہ ضرور چلتا کہ کوئی انٹرنیشنل سائڈ آئی ہے.
میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی طرح سے انالائز کیا ہے اور تھوڑی سلیکشن میں کم سے کم 3 سے 4 لڑکوں کی سلیکشن جو تھی وہ اور بہتر ہو سکتی تھی. اور میں آپ کو ایک بات آنیسٹلی بتا رہا ہوں سر, کہ یہ جو فاسٹ بولنگ اٹیک ہمارا ہے تھا, شاہین شاہ افریدی اور دوسرے جو ہمارے ساتھ دوسرے اور تھے, بڑا زبردست بولنگ اٹیک ہے. یاسر شاہ ہمارے پاس اس وقت پرابلی دنیا کا بیسٹ سلیکشنر ہے, لیکن کس بولر کو کتنا یوز کرنا ہے, کہاں یوز کرنا ہے, کس وقت پہ یوز کرنا ہے, کس فیلڈ پلیسمنٹ سے یوز کرنا ہے, لائن کیا اس کی بنوانی ہے, اسے بتانا کیا ہے کہ تم نے بولنگ کہاں کرنی ہے, یہاں تم نے کرنی ہے. اب یاسر شاہ فار ایگزامپل از اے میچ وننگ وکٹ ٹیکنگ بولر, اس کو آپ نے اسٹاک بولر بنا دیا, اسے 12-12, 14-14, 16 اوور کا اسپیل کروا دیا تو وہ اسٹاک بولر بن گیا.
بالکل بالکل.
اس طرح آپ کو کمپیرزن اگر آپ دیکھ لیں تو سوری جو لائن ہے ان کا, جو جیسن لائن ہے ان کا آف اسپنر, نیتھن لائن سوری, وہ کوئی ورلڈ کلاس کا ٹاپ کا آف اسپنر ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ کتنی خوبصورتی سے کس جگہ اس کو یوز کرتے تھے. اسے 20 میرے خیال سے 10 اوور کا بھی کوئی اسپیل نہیں کروایا, لیکن لے کے آتے 4 اوور کے لیے, 6 اوور کے لیے, بیچ میں ایک دو بریک تھرو دیا, پھر چینج کر دیا. تو ویریشن بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, ہم نے ویریشن نہیں استعمال کی ہے سر, دیٹ واز دا مین پرابلم. ادر وائز آئی کین یو واٹ, ہمارا بولنگ اٹیک ایسا نہیں تھا کہ ان کو 650-550 آرام سے.
ویریشن جی آپ نے بالکل درست کہا کہ ایکچولی ویریشن, آپ نے اتنی اچھی مثال دی ہے کہ اگر آپ یاسر کو مسلسل کھلائیں گے تو اس کو تو آرام سے سمجھ جائیں گے اور اس کنڈیشنز میں اس کو جتنی سپورٹ مل رہی ہے تو پھر تو اس سے اسٹاپ بالر ہو جائے گا. سو اب آتے ہیں محسن بھائی, نیا جو کہنا چاہیے کہ سیریز آپ کے سامنے ہے, لیکن اچھی بات یہ,
جی جی ایک چیز ایڈ کر دوں اگر آپ برا نہ مانیں,
پلیز پلیز.
آسٹریلیا دیکھیے, آسٹریلین پلیئر جو ہیں بڑے اگریسو ہیں, اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والی ٹیم ڈری بھی ہے ہارنے سے, یقین کریں وہ اس کے اوپر چھا جاتے ہیں. ہم لوگ جب آسٹریلیا جاتے تھے تو ہم ایک چیز یہ رکھتے تھے, ہم اتنی باڈی لینگویج اتنی اسٹرانگ رکھتے تھے کہ الحمدللہ کہ آسٹریلیا سے ہمارا بڑا زبردست برابر کا کمپٹیشن چلتا تھا. لیکن یہاں میں انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے تو سر ہی گرے ہیں پہلے سے, ان کی باڈی لینگویج میں, یہاں سے جب ٹیم جا رہی تھی وہاں جا کے بھی ہم کوشش کریں گے. ارے بھائی, یو شوڈ گو دیر اینڈ سے کہ وی ول انشاءاللہ وی ول ٹرائی اینڈ ون اینڈ ول بیٹ دی ٹیم. جب ہم نے انگلینڈ کو 3-0 ہرایا تھا, وہ تو ان کی سٹار سٹڈڈ ٹیم تھی, تو وہاں جب مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کا کیا ریزلٹ دیکھتے ہیں, کہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں, جیتنے کی بات بہت دور کی ہے, تو میں نے ان کو ایک جواب دیا تھا میڈیا کو, میں نے کہا تھا یہ آپ سیریز سے بات پوچھیے گا ہم سے, اور اللہ کے فضل سے ان کو 3-0 وائٹ واش کیا تھا ان کو. تو باڈی لینگویج بہت کاؤنٹ کرتی ہے, اسٹرانگ باڈی لینگویج. آسٹریلینز کے خلاف اگر آپ ہاں نیچے سر گرے ہوئے سے اور باڈی لینگویج اسٹرانگ نہیں ہوگی تو وہ تو آپ کو بالکل چھا جائیں گے,
غالب آ جائیں گے, اور ان کی اس بارے میں بڑی تربیت ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی بڑی ٹیمیں پاکستان کی جو اسٹرانگ تھیں ان کو بھی بہرحال مشکل وقت ہوا ہے سامنا اس کا. پاکستان کے اندر ایک ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کرایا گیا تو اس کے بعد یہ پہلی سیریز تھی. میں اس ماڈل کو بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا کہ وہ اس میں کتنی خامیاں یا خوبیاں ہیں, وہ ڈلیور کر بھی پائے گا یا نہیں پائے گا. اگر ہم اس سیریز کے بالکل ہی منفی نتائج کو نکال دیں تو یہ جو نیا ماڈل انٹروڈیوس ہوا ہے, آپ کے خیال میں اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟
دیکھیے, عمران خان کی ایک خواہش ہے کہ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کا اسٹینڈرڈ امپروو کیا جائے, لیکن میں آپ کے الفاظ استعمال کروں گا کہ اس وقت میں جو انہوں نے ایک دم سے لا کے ایک دم سے سسٹم سمجھیے انفورس کر دیا, آئی تھنک اس پہ تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا ہمیں, اس لیے کہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے 40-45 سال سے, اور جو ڈپارٹمنٹس کو بھی ہٹا دیا ہے, ایک تو بہت بڑا ڈرا بیک ہوا ہے. آپ کو شاید وہاں ساری نیوز ملتی ہوگی, کتنے کرکٹرز جو امپلائڈ تھے وہ سارے بےچارے بے روزگار ہو گئے ہیں, तो बिकॉज डिपार्टमेंट्स ने जिसमें बैंक्स थे ये ऑर्गेनाइजेशन PIA थी एयरलाइंस थे और दूसरे बाबदा KESC सारा कुछ ना हजारों की तादाद में लड़के जो थे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ एम्प्लॉयड थे और क्रिकेट भी खेल रहे थे तो इस चीज ने एकदम से धचका पहुंचाया है क्रिकेट में लोग ना डिप्रेशन नजर आया है कि पहले अब मुझे याद है अच्छी तरह कि असल जब मैं छोटा था 17-18-19 साल का जब मैं फर्स्ट ग्रो कर रहा था तो फर्स्ट उस जमाने में माँ बाप इजाजत नहीं देते थे खेलने के लिए कि सारा सारा दिन बर्बाद करेगा क्रिकेट में ना पड़ेगा तो इसका फ्यूचर क्या बनेगा और यहाँ पे मैंने भी एक बात ये कही थी कि इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज करें तो ज्यादा से जैसे बड़े हम लोग जब क्रिकेट खेल रहे थे इमरान ही हमारे कैप्टन थे तो हमारी बड़ी अच्छी इमरान की एक पॉलिसी थी कि एक एक दो दो नए लड़के इंडक्ट कर रहा है 6-7 लड़के नहीं इंडक्ट कर रहे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली नए यंग लड़का भी सीनियर्स के साथ ग्रूम अप करें तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉलिसी कि आप कोई चेंज लेके आए तो स्लोली एंड ग्रेजुअली और विद सॉलिड प्लान्स के भाई हम इन प्लान्स के साथ जा रहे हैं किसी को हम वो नहीं करेंगे बहुत से क्रिकेटर्स यहाँ पे पता है बेरोजगार हुए हैं काफी इस मामले में डिप्रेस हुए हैं लोग
मोहसिन खान साहब अब आते हैं जरा श्रीलंका एक तो ये कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए PCB को कि जिस टीम को मुश्किल और इंतहाई क्रिटिकल टाइम का सामना करना पड़ा वही टीम पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की रेस्टोरेशन में पेश पेश है एक बात और अब ये सीरीज़ जब होने जा रही है तो ये श्रीलंका की T20 की फातह टीम पिछली सीरीज़ में टेस्ट में पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगी और टेस्ट में अब पाकिस्तान को अपना वापसी दिखाने के लिए क्या करना होगा तो एक ही सवाल के अंदर तीन जाविए हैं
देखिए पहली बात तो मैं आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल किया है और अल्लाह के बाद अल्लाह का सबसे पहले मैं एज ए पाकिस्तानी शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आ रही है और उसके बाद मैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का और उसके बाद मैं अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जोर लगाया मेहनत की कि श्रीलंका को कन्विंस किया उनको ला के मैचेस भी खिलाए सिक्योरिटी दी और फिर एक बात का मैं और बड़े फख्र से एक बात कह सकता हूँ कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि हमारी फौज या हमारे रेंजर्स और ये सब मिलके सिक्योरिटी देते हैं तो अल्लाह की फजल से इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है कि आप यकीन कीजिए कि आप जो भी यहाँ मेरी बात सुन रहा हो जिसे नहीं देखा हो वो आके देखे कि भाई हाँ माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आपको मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा सर कि बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इतना बड़ा डिजास्टर जो उनके लोगों ने फेस किया था उन चीजों को भुला के उन्होंने फिर पहले ये शॉर्टर वर्जन खेलना है वनडे और T20 अब वो पूरी अपनी टीम को भेज जाने लगी पूरी टीम भी इस वक्त श्रीलंका एट द मोमेंट असद स्ट्रगल कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर मेरे ख्याल 5वें-6वें नंबर पे है टेस्ट क्रिकेट में तो इनकी वो टीम नहीं है जिस वक्त जयवर्धना संगकारा दिलशान और मेंडिस और पता नहीं सारे कुछ मलिंगा वगैरह सारे खेल रहे थे लेकिन फिर भी उनमें एक बड़ी अच्छी बात है कि वो बड़े जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेलते हैं अब देखिए उनकी कितनी कमजोर सी टीम आई थी T20 सीरीज जीत के चली गई वनडे मैचेस बड़ी मुश्किल से जीता पाकिस्तान तो तैयारी हमें जो आपने उसकी तो मैंने आपसे बात कह दी कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि टेस्ट क्रिकेट वापस आ रही है पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पूरा जितना आप क्रेडिट दें वो कम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कोशिशें हैं उसको बिल्कुल सराहना चाहिए लेकिन अब जो कमबैक करने का अब अपने होम कंडीशंस हैं सामने इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है लेकिन जब तक आप किसी को हराएं ना किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए
मैं सिर्फ रैंकिंग पे रैंकिंग की एक बार अपडेट देते चलूं कि जुताजतरीन ICC की टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग है उसमें ऑस्ट्रेलिया 6ठे और पाकिस्तान 8वें नंबर पे है तो यानी इस बुरे हालात के बावजूद कि उसके जो टॉप प्लेयर हैं सुपरस्टार्स हैं वो टीम का हिस्सा नहीं है टीम ने इन दिनों उसकी परफॉर्मेंस बहुत डिक्लाइन किया है बट स्टिल टीम अपने आप को 6ठे नंबर पे मेंटेन रखे हुए है 95 पॉइंट्स के साथ और पाकिस्तान के 80 पॉइंट्स हैं और वो 8वें नंबर पे हैं सो क्या रिकमेंड करेंगे सीरीज में अगर पाकिस्तान जीते और अपने जो उसके मद्दा हैं उनके जहनों में जो ऑस्ट्रेलिया का एक कहना चाहिए कि होलनाक और यादें हैं ड्राउनी यादें हैं उनको महव करने के लिए क्या करे टीम के स्पिरिट्स के लिए और टीम में क्या चेंजेस आनी चाहिए
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि 2-3 गलत सिलेक्शन हुई थी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस वक्त सब किसी का बिकॉज अगर मैं इस वक्त चीफ सिलेक्टर होता या कोच होता तो मैं जरूर आपको बताता कि इन लड़कों को मैं लेके आऊंगा बल्कि पहले से वो होते जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए थे तो जो डिजर्विंग लड़के थे और जो नहीं जिनको होना चाहिए था वो नहीं होते मैं क्लियरली बात कह रहा हूँ बिकॉज جب میں چیف سلیکٹر تھا اسد, میں نے یہی ایک بات اپنی سلیکشن کمیٹی کو کہی بھی تھی کہ ہم نے بیسٹ پاسبل ٹیم بنانی ہے, سفارش کا نام و نشان نہیں ہم نے دیکھنا, ہم نے سفارش نہیں, ہم نے پلیئر سلیکٹ کرنا, اور ہم نے پلیئر دیکھنا ہے, جگہ نہیں دیکھنی, چاہے وہ کراچی سے ہو چاہے وہ وہاں سے. آپ نے جیسے یاسر شاہ کو اور جنید خان کو ہم سوابی سے لے کے آئے تھے, بہت سے لوگوں نے سوابی کا نام نہیں سنا تھا لیکن ہم وہاں سے ان کو لے کے آئے. تو اس میں کیا چاہیے, میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ سری لنکا مضبوط اتنی ٹیم نہیں ہے, لیکن ہمیں دیکھیے جب تک آپ کی مینٹل ٹفنیس نہیں ہوگی, ٹیم مینجمنٹ کو لڑکوں کو کھڑا کرنا پڑے گا, مینٹلی ٹفنیس دینی پڑے گی کہ وی آر دا بیسٹ, ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. اور سری لنکا ٹھیک ہے, ان کی پوری ٹیم نہیں ہے, لیکن پھر بھی جیسے بھائی ابھی آپ نے بتایا رینکنگ میں وہ اب بھی ہم سے بہتر ہیں, تو ان وہ محنت سے کھیلتے ہیں, تو اسپرٹ کے ساتھ اگر ہم کھیلے تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان ٹیم انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرے گی. اور ٹو اسٹارٹ وتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو میں آنےسٹلی اب بھی فیوریٹ رکھوں گا, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ سری لنکا کو لائٹلی نہیں لے سکتے, بیکاز وہ بڑی محنت سے کرکٹ کھیلتے ہیں.
جی محسن بھائی, آخری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ہم نے ظاہر ہے سری لنکا کی سیریز پہ بھی بات کر لی, آسٹریلیا کی سیریز پہ بھی, لیکن چھوٹی موٹی چینجز ہوں گی ٹیم کے اندر, بٹ مینجمنٹ سیم ہے. پچھلے سیریز کے بعد کافی تنقید ہوئی کہ ٹیم سلیکشن کے اوپر, پھر کوچنگ کے اوپر, اور اتفاق سے کوچ بھی نئے ہیں, چیف سلیکٹر بھی وہی ہیں, اور بالنگ کوچ پہلے سے بھی یہ کچھ پرفارم کر چکے ہیں. سو یہ صرف پلیئرز کا قصور ہے یا کہیں پہ کوچنگ اور جو ٹیم مینجمنٹ ہے ساتھ, ان کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی, لینی چاہیے ہے؟
دیکھیے میں آپ کو اس طرح سے اس کو بات کہتا ہوں بڑی سمپل طریقے سے, آئی تھنک آپ کے سننے والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایک کلاس میں اسکول یا کالج میں لے لیں آپ, 30 اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں 25 جو ہیں بڑی اچھی طرح پاس ہوتے ہیں, 5 لڑکے بالکل خراب رزلٹ آتا ہے ان کا, تو وہ کہیں گے جی اس میں ٹیچر کا قصور تو نہیں ہے, اس میں یہ 25 لڑکے زیادہ اچھے آئے, پاس خراب ہو گئے. لیکن میں اس میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ جب ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ یہ نوٹ کرتا ہے ایک بات کو, اگر میری کلاس میں کچھ 5 یا 7 لڑکے کچھ کمزور ہیں یا ان کے اوپر مجھے زیادہ توجہ دینی ہے, تو ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ اس پہ زیادہ توجہ دیتا ہے کہ میرے 30 بوائز ہیں, بوائز یا گرلز ہیں, تو اگر وہ 30 کے 30 بڑے اچھی طرح سے پاس ہوں تو وہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انڈیویجل محنت کے اوپر لڑکا اسٹوڈنٹ پاس کر جاتا ہے اپنی کلاس کو, تو اس میں ٹیچر کا کوئی کمال نہیں ہے. اسی طرح کرکٹ میں جو ٹیم مینجمنٹ بنتی ہے, دیکھیں آپ دنیا کی ہر ٹیم کے پاس ٹیم مینجمنٹ ہے, اور اسٹاف بھی 1 کا 2 کا نہیں 6 5 5 6 کا ہوتا ہے ہر چیز کا, بیکاز کرکٹ جو ہے نا ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, اور دن بدن کرکٹ تھوڑی ٹیکنیکلی آگے بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو اسٹاف سے فائدہ, جو میں اپنا جو میرا ایکسپیرینس تھا, میں نے کچھ نہیں کیا تھا لڑکوں کے ساتھ, ان کو میں نے کھیلنا نہیں سکھایا تھا, لیکن کیا ہوا, کسی کی چھوٹی سی فالٹس دیکھی, اسے بتا دیا کہ دیکھو بیٹا اس کو یہ ٹھیک کر لو, تو تمہارا بلہ ٹیڑھا آ رہا ہے یا تمہارا سر گر رہا ہے, اس کو سیدھا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اور گیم پلان دینا ان کو, اسٹریٹجیز بتانا کہ لڑکوں کو ریئلائز کرانا کہ کل یہ دن ہے, اس پلاننگ کے ساتھ ہم نے جانا ہے, اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم نے جانا ہے. تو یہ چیزیں بات یہ بالکل ایگزیکٹلی میں آپ کو ٹیچر والی مثال دوں گا,
ٹیچر ریسپانسیبل ہے,
اچھا ٹیچر ہو.
ہم تو یہ سنتے ہیں محسن خان صاحب کہ پاکستان جو ہے, اور پاکستان کے جو اسکیپر ہیں, جو اس وقت پاکستان کے بھی اسکیپر ہیں, وہ کہتے ہیں اگریسو کرکٹ کھیلنی ہے. مصباح الحق جو ہیں, ان کا جو ٹیگ ہے ان کے اوپر, وہ ایک ڈیفینسو اپروچ والے کیپٹن بھی رہے ہیں, پلیئر بھی رہے ہیں, کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگریسو کرکٹ کھیلیں گے, اس کا شائبہ بھی نہیں ہوا آسٹریلیا کے اندر, تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟
میرا خیال تو اصل آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا. میں اور پھر وہ رہا, جب میں کوچ ہیڈ کوچ بنا تھا تو اس وقت مصباح کیپٹن بنا چکے تھے ہم مصباح کو, بلکہ مصباح کو ٹیم میں لانے والے چیئرمین نے مجھ سے جب ذکر کیا تو میں نے کہا ہاں مصباح کو لے کے آتے ہیں, ایک اسٹڈی بیٹسمین چاہیے, تو لے اور اس کو میں نے جب میں کوچ بنا تو پھر میں نے مصباح کو اس میں کوشش کی, اس کو بتا, اس سے ڈسکشن کرتا تھا, اس سے بیٹھ کے تھوڑا امپریشن دے کے آئے, لیکن یہ بات رہی ابھی تک اس میں وہ چیز نہیں ہے. اور دیکھیے کیپٹن کو سب سے بڑی بات, اوور اگریسو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگریسو اس لیے ہونا چاہیے کہ ٹیم میں اگر کوئی کمزور لڑکا ہے تو وہ اپنی مثال اس کے سامنے رکھ سکے کہ دیکھو تمہیں اس طرح کی جانا ہے, یہ اپروچ تمہاری ہونا چاہیے, اوور اگریسو نہیں لیکن اگریسو وتھ سینسیبلٹی. تو یہاں और मैं समझता हूँ कि जैसे कोचेज भी होते हैं, कैप्टन होता है, ये बड़ा डिपेंड करता है कि ये किस वो दिमाग के अगर उनको होना पड़ता है पॉजिटिव एग्रेसिव विद सेंसिबिलिटी कि जो लड़कों में वो रन थ्रू करें कि भाई तुमने इस अप्रोच के साथ जाना है और ऐसी टीमें कामयाब होती हैं। ऑस्ट्रेलिया आज जो आपने देखा उसने हमें आउट क्लास कर दिया सिर्फ अपनी एग्रेशन की वजह से, अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, अपना विद सेंसिबिलिटी। तो ये चीज आई थिंक जरूरी होती है एक कोच के लिए, एक कैप्टन के लिए।
बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया।
थैंक यू।
इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका का ये प्रोग्राम आपकी दुनिया अपने अख्ताम को पहुंचता है। असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की